आरव का अपने घर पर मन नहीं लग रहा था, तो वो आयु के पास ओबेरॉय मेंशन में आ गया। अगली सुबह आयु को जल्दी हॉस्पिटल जाना था, तो वो वहीं से हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी और सबके कहने पर मजबूरन आरव को आयु को ड्रॉप करना जाना ही पड़ा। बाहर आते हुए आरव ने तिरछी निगाहों से आयु की तरफ देखा और कहा, फ्रेश भी नहीं होने दिया। अरे हाँ, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आयु सिर पकड़कर बोली। तुम ऐसा करो, वापस चले जाओ, मैं कैब लेकर चली जाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी में फ्रेश हो जाऊंगा, वहाँ सारा सामान रखा होता है। ऑफिस जाने में लेट होने पर काफ़ी बार मैं वहीं पर तैयार होता हूँ, आरव ने जवाब दिया और गाड़ी की बैक सीट पर आ गया, जिसे एक छोटे कंफर्टेबल रूम के हिसाब से रीडिज़ाइन किया गया था। आयु भी उसके साथ बैक सीट पर आ गई। आयु ने पहले ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि पहले फ्रंट और बैक सीट के बीच में पार्टीशन लगा हुआ था। ये आरव की पर्सनल गाड़ी थी, जो ज़्यादातर खुराना इंडस्ट्रीज़ में खड़ी रहती थी। उसने गाड़ी को देखा, गाड़ी की सीट को कंफर्टेबल काउच में कन्वर्ट किया गया था। बाकी साइड में एक तरफ छोटी अलमीरा सेट थी, जिसमें ज़रूरत का सामान रखा हुआ था। अंदर आते ही आयु काउच पर कंफर्टेबल होकर बैठते हुए बोली, अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ रखा हुआ है। आरव ने आयु को देखकर ईविल स्माइल दी और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्यों, तुम्हारा क्या करने का इरादा है मिसेस खुराना? कहीं काउच देखकर तुम्हारी नीयत तो खराब नहीं हो रही? आरव के पास आते ही आयु ने अपनी नज़रें झुका लीं और धीरे से कहा, हे, ऐसा कुछ नहीं है आरव, मुझे लेट हो रही है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बोलते हुए आयु से अलग हो गई। आयु आगे जाने की बजाय अभी भी वहीं पर बैठी थी और आरव को देख रही थी। आरव ने साइड में बने शेल्फ से कुछ पाउच और टूथब्रश निकाला। आरव ने कुछ भी करने से पहले आयु की तरफ देखा और कहा, आगे चली जाओ, वैसे नहीं भी जाओगी तो चलेगा, लेकिन चली जाओ, मैं ही कंफर्टेबल नहीं हूँ, थोड़ी तो प्राइवेसी दो मिसेस खुराना। आयु आरव के कहने का मतलब नहीं समझ पा रही थी, फिर उसने ध्यान दिया आरव के हाथ में क्या था। आयु जोर से चिल्लाकर बोली, नो आरव, तुम यहाँ कुछ नहीं करोगे, बाहर बाहर वॉशरूम है, तुम आओ मेरे साथ, बोलते हुए आयु ने आरव के हाथ से पाउच छीनकर वापस रख दिया। फिर आयु ने आरव का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर लेकर आई। ओबेरॉय मेंशन के आउटसाइड एक बाथरूम बना हुआ था, आयु उसे वहां लेकर गई और कहा, जो करना है जल्दी करो, कहकर आयु वहीं पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। तुम यहां खड़ी रहीं तो जल्दी होना तो दूर की बात है, कुछ होगा भी नहीं, चलो बाहर जाओ। आरव ने जल्दी से आयु को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया और लगभग 15 मिनट बाद वापस आया। फ्रेश होने के बाद आरव को थोड़ा बेहतर लग रहा था, उसने आयु की तरफ देखकर कहा, अब मुझे एक स्ट्रांग कॉफ़ी चाहिए, हाँ उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ने जा सकता हूँ। तुम पागल हो गए हो, इससे अच्छा मैं कैब करके चली जाती हूँ, कब से तुम्हें पैम्पर करने में लगी हूँ, कभी तुम्हें टूथब्रश करना होता है, कभी वॉशरूम जाना होता है, और अब तुम्हें कॉफ़ी चाहिए। देखो आरव खुराना, मुझे परेशान करना बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा, आयु आरव पर जोर से चिल्लाकर बोली। वो उससे परेशान हो गई थी, क्योंकि पिछले 20 मिनट से ड्रॉप करने के बहाने वो नखरे किए जा रहा था। आरव ने आइज रोल की और कहा, ठीक है, चिल्ला क्यों रही हो, कौन सा तुम्हें अंदर से बनाकर लाने को कह रहा हूँ, गाड़ी में तुम्हें सब मिल जाएगा, हॉस्पिटल का रास्ता लंबा है, तुम बीच में मुझे कॉफ़ी बनाकर दे सकती हो। क्यों नहीं सर, आपने अपने छोटे मोटे काम करवाने के लिए तो मुझसे शादी की है, आयु ने चिढ़कर कहा और गाड़ी की तरफ जाने लगी। आरव उसके पीछे पीछे आ रहा था, वो जवाब में बोला, हाँ अब बड़े बड़े काम तो तुमसे होते नहीं, तो सोचा थोड़े छोटे छोटे काम ही करवा लूँ। आयु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह बनाते हुए पैसेंजर सीट पर बैठ गई। आरव कार की बैक सीट पर गया और उसने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कॉफ़ी मेकर लाकर आयु के हाथ में थमा दिया, साथ में पानी की बोतल, मिल्क पाउडर और कॉफ़ी का पैकेट भी था। उसने अपने लिए कुछ कुकीज़ भी निकाली थी। आयु ये सब देखकर हैरान हो रही थी कि कहाँ उसे लेट ना हो, इस चक्कर में ताराजी ने उसे साथ में सैंडविच पैक करके दिए थे और अब आरव यहाँ उससे अपनी पूरी खिदमत करवा रहा था। मैं कह रही हूँ तुमसे आरव, ये जो तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है, आयु ने कहा और उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। आरव मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर आ गया और गाड़ी स्टार्ट की। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि आयु उसकी इन हरकतों से कितना ज़्यादा गुस्सा कर रही है, उसे बस आयु को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। आयु ने आरव के लिए कॉफ़ी तैयार कर दी थी। कॉफ़ी बनने के बाद उसने मग को आरव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए मिस्टर खुराना, और कोई सर्विस जो मैं कर सकती हूँ आपकी? वो उससे टॉन्टिंग वे में बात कर रही थी। आरव ने आयु की तरफ देखकर सिर हिलाया और कहा, What do you mean by लीजिए? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे कॉफ़ी पिलाने वाली हो, मुझे कॉफ़ी के साथ कुकीज़ भी चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस 2 चलेगी। मन तो कर रहा है इस कॉफ़ी और कुकीज़ में डुबाकर इसकी जान ले लूँ, आयु ने बड़बड़ाकर कहा और फिर आरव को अपने हाथ से खिलाने लगी, साथ में बीच बीच में वो उसे कॉफ़ी भी पिला रही थी। आरव ने गाड़ी की स्पीड स्लो कर रखी थी। आयु भले ही सब कुछ गुस्से में कर रही हो, लेकिन आरव को इन सब में बहुत मज़ा आ रहा था। उसने आयु के चेहरे की तरफ देखा और कहा, ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है, मैं पूरी नहीं पीने वाला, तो तुम भी ले सकती हो। एहसान आपका जो आपने मेरे बारे में भी सोचा, आयु ने सरकास्टिक वे में कहा और फिर खुद भी कॉफ़ी पीने लगी। कॉफ़ी खत्म होने के बाद आयु ने अपना सैंडविच निकाला और खा रही थी। आरव ने उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा और कहा, कितनी सेल्फिश होना तुम, मैंने तुमसे अपनी कॉफ़ी शेयर की, लेकिन तुमसे अपना सैंडविच शेयर नहीं हो रहा, लो खाओ, बोलते हुए आयु ने जबरदस्ती आरव के मुंह में सैंडविच ठूस दिया। लगभग डेढ़ घंटे बाद आरव और आयु हॉस्पिटल पहुंचे। इन डेढ़ घंटे में आरव आयु को जितना परेशान कर सकता था उसने किया। हॉस्पिटल आते ही आरव गाड़ी से उतरा और आयु को हक करते हुए बोला, ये मेरी लाइफ की दूसरी बेस्ट जर्नी थी। जो भी कहो, जब तुम्हारी इन एम्बर आइज में गुस्सा देखता हूँ तो दिन बन जाता है। दूसरी बेस्ट जर्नी से तुम्हारा मतलब पहली कौन सी थी? आयु ने हैरानी से पूछा। बोलते हुए वो आरव से अलग हो गई। पहली वो जब तुमने गलती से मेरी ड्रिंक पी ली थी, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर उसने आयु के बालों को आगे से सही किया और कहा, अपना ख्याल रखना, मैं शाम को लेने आऊंगा। कोई जरूरत नहीं आने की, मुझे पता है तुम मुझे रास्ते में इसी तरह तंग करोगे, आयु ने सिर हिलाकर कहा। पर आरव उसकी कहां सुनने वाला था। आरव ने इधर उधर देखा। सुबह होने की वजह से वहां इतनी भीड़ नहीं थी और थोड़े बहुत जो लोग थे वो अपने में ही लगे थे। आरव ने जल्दी से आयु के गाल पर हल्का सा किस किया और कहा, शाम को मिलते हैं मिसेस खुराना। आयु को बाय बोलने के बाद आरव वहां से चला गया, जबकि आयु उसे जाते हुए देख रही थी। आरव के जाने के बाद न जाने क्यों आयु को आरव का परेशान करना इतना अच्छा लग रहा था, जो उसके जाने के बाद भी वो आरव के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। आई लव यू आरव, अचानक आयु के मुंह से निकला। फिर उसने इधर उधर देखा कि कोई उसे इस तरह पागलों की तरह मुस्कुराते हुए तो नहीं रहा। फिर आयु जल्दी से अंदर चली गई। भले ही आरव और आयु ने कुछ भी करने से पहले एक बार इधर उधर देखा था कि कोई उनकी हरकतों को देखा तो नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा था जो उनके ऊपर नजरें बनाए हुए था।
वाहन पार्किंग एरिया में गाड़ियों की भीड़ के बीच में एक गाड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर फैज खान बैठा था। वो आरव और आयु को एकटक देख रहा था। हालांकि आयु का चेहरा दूसरी तरफ था तो उसे ठीक से वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन दूर से वो आरव को एकदम साफ देख पा रहा था। तो बहुत प्यार करते हैं आप अपनी बेगम साहिबा से? आखिर वो हैं ही ऐसी कि पहली नज़र में ही सामने वाले को अपना बना लेती है। सॉरी मिस्टर खुराना, आपकी बेगम साहिबा हमें पसंद आ गई है और अब हमें वो चाहिए, फैज़ में खोई हुई आवाज़ में कहा और अपनी गाड़ी वहां से निकाली। फैज़ ने अपनी गाड़ी इस तरह से बाहर निकाली थी कि पार्किंग एरिया की तरफ आ रही दो गाड़ियों से जा टकराई। तीनों गाड़ियां आपस में टकराने से गाड़ी ड्राइव कर रहे तीनों ही इंसानों के चोट लग गई और सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ वार्ड बॉयज दौड़कर वहां आए। उनके हाथ में स्ट्रेचर थे और उन्हें एक्सीडेंट होने की खबर मिल चुकी थी। सिक्योरिटी अलार्म का बजना इसी बात का संकेत था कि हॉस्पिटल में या इसके आसपास के एरिया में किसी का एक्सीडेंट हुआ है। तीनों पेशेंट को अंदर लाया गया था, जिनमें फैज भी एक था। एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो तीनों घायल हो चुके थे। आयु अपने केबिन तक पहुंची नहीं थी कि जनरल वार्ड में उसने केओस देखा। आयु अंदर जाने के बजाय जनरल वार्ड में चली गई। सुबह होने की वजह से डे ड्यूटी के डॉक्टर अभी आए नहीं थे और नर्सेस ही उन्हें अटेंड कर रही थी। आयु जल्दी से अंदर आई और किसी दूसरे घायल आदमी की तरफ बढ़ने लगी। उस आदमी को इस एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा चोट आई थी। फैज को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो वो जोर से चिल्लाया, आ हमारा सिर। ये सब उसने आयु का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए किया था, जबकि ऐसी चोटों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आयु दौड़कर जल्दी से फैज के पास आई और नर्स से तेज आवाज में कहा, सिस्टर इन सब के इनिशियल टेस्ट करवाएं, आई होप इन्हें कोई मेजर इंजरी ना हुई हो, मैं चेक कर लेती हूँ। आयु नर्स से बात कर रही थी जबकि फैज उसे एकटक देख रहा था। आयु ने ब्लैक पैंट्स के साथ व्हाइट लूज शर्ट पहना हुआ था, जो उसने मेसी तरीके से टक इन रखा था। उसके लंबे बाल पीछे पिगटेल में बंधे हुए थे। आगे के बालों की कुछ लटे बाहर थी, जिन्हें वो बात करते हुए हल्के हाथ से पीछे कर रही थी। नर्स से बात करने के बाद जब आयु ने फैज की तरफ देखा तो वो उसे देखता रह गया। उसकी छोटी लाइट अम्बर आइज उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, छोटा सा नाक और गोरे चेहरे पर उभरे हुए पिंक होंठ। आयु को देखकर फैज को ऐसा लग रहा था जैसे अब तक उसे किसी ऐसी ही लड़की की तलाश थी, जिसे वो प्यार करने से पहले जी भर के देख सके, उसकी खूबसूरती की तारीफ कर सके। उसने अब तक जिन भी लड़कियों से शादी की थी वो भी खूबसूरत थे, लेकिन आयु की खूबसूरती के साथ एक साथ की थी जो उसे बाकी लड़कियों से अलग बनाती थी, वही फैज को और अट्रैक्ट कर रही थी। आयु आरव के पास आई और उसका हाथ पकड़ा तो मानो फैज की दिल की धड़कनें थम ही गई थी। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसका ऐसा हाल देखकर आयु घबरा गई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सिस्टर जो भी डॉक्टर अवेलेबल है उन्हें जल्द से जल्द ओटी रेडी करने को कहो, मुझे नहीं लगता कि पेशेंट की हालत ठीक है, शायद उन्हें ज्यादा चोट आई है। आयु की आवाज से फैज का ध्यान टूटा और उसने हल्की आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए उसे देखा। आयु के चेहरे पर खुद के लिए परेशानी के भाव देखकर फैज को दिल ही दिल में सुकून महसूस हो रहा था।